नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि धर्म ध्वजा सदियों के सपने का साकार स्वरूप है। उन्होंने कहा कि आज संपूर्ण विश्व राममय हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि धर्म ध्वजा कर्तव्य का बोध कराएगा।
ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। इसका भगवा रंग, इस पर रचित सूर्य वंश की ख्याति, वर्णित ओम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे सपनों का साकार स्वरूप है।
इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आज सुबह अयोध्या में एक रोड शो किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने सप्त मंदिर और शेषावतार मंदिर का दौरा किया। शेषावतार मंदिर देश में भगवान राम के दुर्लभ मंदिरों में से एक है। प्रधानमंत्री ने माता अन्नपूर्णा मंदिर में भी दर्शन किए और रामलला गर्भगृह में दर्शन और पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री आज शाम गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हरियाणा में कुरुक्षेत्र जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में एक विशेष सिक्का और स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे। गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के सम्मान में केंद्र सरकार एक वर्ष तक चलने वाला स्मरण उत्सव मना रही है। श्री मोदी ने गुरु तेग बहादुर जी को उनके 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि आस्था और मानवता की रक्षा के लिए दी गई गुरु तेग बहादुर जी की शहादत समाज को सदैव आलोकित करती रहेगी। राष्ट्र कल संविधान दिवस मनाएगा। इस वर्ष के समारोह का विषय हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान है। मुख्य समारोह नई दिल्ली स्थित संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित किया जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने कहा है कि नई श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन से अर्थव्यवस्था को उल्लेखनीय बढ़ावा मिलेगा और देश में बेरोजगारी दर में कमी आएगी। बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार नए श्रम संहिताओं से बेरोजगारी दर में 1.3% तक की कमी आ सकती है। इससे 77 लाख अतिरिक्त रोजगार सृजित होंगे। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस महीने की 21 तारीख से लागू हुई नई श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन से श्रम बल में नियमित रोजगार की हिस्सेदारी कम से कम 15% बढ़ जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वर्तमान में निर्माणाधीन नौसेना और तटरक्षक बल के जहाज भारतीय शिपयार्ड में बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये आत्मनिर्भर भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण का प्रमाण है। आज नई दिल्ली में समुद्र उत्कर्ष संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि भारत के लिए समुद्री व्यापार पर निर्भरता विशेष रूप से अधिक है। इथियोपिया के हेली गुब्बी ज्वालामुखी से निकली राख के अरब प्रायद्वीप में फैलने और विमानों की उड़ान के लिए अनुकूल स्थिति न होने से भारतीय विमानन कंपनियों ने पश्चिम एशिया के लिए अपनी कई उड़ानें निलंबित कर दी हैं या उनके मार्ग बदल दिए हैं। इंडिगो ने 6 उड़ानें रद्द की हैं और कन्नूर अबुधाबी सेवा को अहमदाबाद के लिए डायवर्ट कर दिया है। आकाशा एयर ने कल और आज अबुधाबी, जेद्दा और कुवैत के लिए सभी उड़ानें निलंबित कर दी हैं। एयर इंडिया ने भी एहतियात के तौर पर कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द की हैं। एयरलाइन ने कहा है कि वो ये सुनिश्चित करने के लिए विमानों की विस्तृत जांच कर रही है कि वे उड़ान के लिए सुरक्षित हैं या नहीं। मौसम विभाग ने कहा है कि इथियोपिया में ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न राख के बादलों के आज शाम तक भारत से चीन की ओर बढ़ने की आशंका है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि राख के बादलों से केवल विमानों के संचालन पर असर पड़ा है, मौसम या वायु गुणवत्ता पर इसका कोई प्रभाव नहीं देखा जा रहा है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के आज चौथे दिन दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी में 4 विकेट पर 189 रन बना लिए हैं। दक्षिण अफ्रीका को अब कुल बढ़त 477 रन की हो गई है। भारत की ओर से रविन्द्र जडेजा ने 2 विकेट लिए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।